इसके बरक्स कुछ लोग जो वहाँ के भी नाकाम चाहे यहाँ कितने ही कामयाब क्यों ना हों, वल्लसी न कफरू व कज़बू भी आयातीना, और जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयतों को, उलाइक असहाबुन नार, यही लोग आग के साथी हैं, खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहने वाले हैं इसमें। ये कौन है जिन्होंने इतनी नसीहतों के बावजूद भी अमल करना पसंद न किया, कुफर पे, फिस्क पे, नाफरमानी पे अड़े रहे, अल्लाह की आयतें जो मर्जी कहती रहें उन्होंने कभी उस पे गौर करने को सोचा भी नहीं, और सोचा तो अमल ना किया, ऐसे लोग जहन्नुम में जाएंगे, वबिसल मसीर, और कितनी बुरी है ये जगह पलटने की। इसके बाद दोबारा रोए सुखन अहले ईमान की तरफ है। ईमान के कुछ फल होते हैं, ईमान के बाद इंसान अपनी शख्सियत में कुछ तब्दीलियां देखता है, उसी का तज़किरा है यहाँ। माँ असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, नहीं पहुँचती किसी को कोई भी तकलीफ सिवाय अल्लाह के इज़्ज़न के। क्या पता चला कि हर मुसीबत अल्लाह ही के हुक्म से आती है। करना क्या है मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में? वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बह, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत बख्शता है। और आप इसको पढ़ दें, वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बह, कल्ब और कल्ब के फ़र्क को किए बगैर तो तर्जमा क्या बन जाएगा? जो अल्लाह पर ईमान ले आए अल्लाह उसके कुत्ते को हिदायत दे देते हैं। कल्ब और कल्ब का इतना फ़र्क है, मखारिज पे गौर करने की ज़रूरत है। ये आयत कब नाजिल हो रही थी? जब मुसलमान मसाइब में से गुज़र रहे थे। मक्का के आखिरी दिन हैं, मदीना की तरफ हिजरतें शुरू हो चुकी, सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देकर लोग मक्का से मदीना आ चुके थे। हर दिन नई मुश्किल, हर दिन नया मसला। दूसरी तरफ मदीना में जो लोग थे उनके घरों में इतने ही लोग और आ चुके थे। इंतजामात का मसला, चीज़ों की कमी का मसला, हर तरफ से इस तरह लगता था कि जैसे कोई बात सीधी हो ही नहीं पा रही। तो अल्लाह ताला तसल्लियां देता है, वह मा साब में मुसीबतन, कोई मुसीबत भी जो तुम्हें आती है। ख़ास तौर पर यहाँ इन आयात को पढ़ते हुए जो बात वाजे होती है वो क्या है कि अल्लाह के रास्तों में जो मुसीबतें आती हैं, हिजरत की सूरत में जो मुसीबत पड़ती है, कुर्बानियों की सूरत में जो मुसीबत आती है, ये अल्लाह के हुक्म से आती है। याद रखिए कि ये दुनिया दारुल महन है, इम्तिहानगाह है। यहाँ मुसीबतें भी आएंगी, असाब भी आएंगे, दुनिया का कोई काम करें उसमें भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आप कारोबार करें, आप खेती बाड़ी करें, मुश्किल आएगी। कहीं कोई इंसान किसी बहुत बड़े काम में लगा होता है, उसके करने के रास्ते में रुकावटें होंगी। इंसान ऐसे मामले में क्या करे? कुछ नहीं कर सकता, आएगा जो आना है। बस एक काम करेंगे कि उस मुश्किल को हल्का कर लें। ईमान का एक इतना बड़ा असर है इस आयत में, सुभान अल्लाह। जिसको समझ आ गया आज के बाद उसकी ज़िंदगी ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून होगी इंशाल्लाह। और वो कभी नहीं कहेगा काश ऐसा ना होता। लव का लव ज़िंदगी से निकल जाता है जिसको ये बात समझ आ जाती है। और वो क्या कि ईमान बिल्लाह इतनी मजबूत चीज़ है, इस कुव्वत के बलबूते पर इंसान में इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आ जाती है, इंसान हर मुश्किल को सर कर जाता है, साबित कदमी, जवां मर्दी इस तरीके से जमता है, वो कहता नहीं ये मुश्किल मेरे लिए बेहतर है। ईमान के बाद मुश्किलात इंसान को मुश्किलात नहीं लगती। इस्लाम के, ईमान के, किताब के रास्ते में आने वाली मुश्किलात के तस्करे नहीं करता, रोने नहीं रोता, दुखी नहीं लगता, परेशान नहीं दिखता। इस रास्ते की मुश्किलात अल्लाह सिर्फ उस पर डालता है जो मुश्किलात सह कर भी चेहरे से मुश्किल में ना लगे। अल्लाह के रास्ते में कुछ किया और चार दिन तक उसका दुख सुनाते रहे और उस पर परेशान रहे और इससे ये हो गया वो हो गया, अल्लाह अगली दफ़ा वो मुश्किल नहीं डालता। यहाँ बड़ा बड़ा करके लिख लें कि अल्लाह ताला अपने रास्ते की मुश्किलात के हार उन्हीं लोगों के गले में डालते हैं जो खुशी से सर तस्लीम में खम कर दें। कभी भी आप किसी को गले में कुछ पहनाना चाहें ना, तो वो सर सीधा रखे तो आप पहना नहीं सकते। आप कहते सर तो नीचे करो, अल्लाह भी यही चाहता है। तुम उसके रास्ते की मुश्किलात लेना चाहते हो, पहले झुको तो सही, आजजी तो लाओ, नरम तो बनो, पहले ईमान का वो तुम्हारे अंदर बोझ तो हो कि वो ईमान तुम्हारे गले को झुका दे। गले में ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई बहुत भारी जेवर पहना हुआ है और उसके बोझ से गर्दन झुकती है। दुनिया में मुश्किलात हर एक को आती हैं और आएंगी और कभी नहीं हो सकती, लेकिन ईमान वाले को उसका ईमान अल्लाह की ज़ात पर यकीन इतना मजबूत कर देता है कि उसको वो मुश्किलात एक तिनके से ज़्यादा बोझल नहीं लगती। जिस चीज़ से लोगों के होश गुम हो रहे होते हैं वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस वक्त लोग अपने आप को हवा के झोंकों के साथ इधर उधर भटकता हुआ महसूस करते हैं, उस वक्त ईमान वाला मुस्कुराता है। फिरौन के जादूगरों को ज़हन में ले आइए, कितनी धमकियाँ थी, हाथ काट दूंगा, पाँव काट दूंगा, सूली पे चढ़ाऊंगा, और उनको पता था कि ये जालिम जो कहता है वो करके रहता है, लेकिन क्या कहा, फ़क़दी मा अंतकाद, जो फैसला करना फिर कर ले, तेरी मर्जी, हम तो अपने ईमान को नहीं छोड़ेंगे। देखिए दो चीज़ों का बहुत तस्करा हो रहा है इन सूरतों में, एक माल और एक औलाद। बहुत सारी नेमतों की तरह माल और औलाद बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन इन दो से बड़ी नेमत है ईमान। माल चला जाए वापस आ जाएगा, कई लोगों के पास नहीं होता, गुजारे को होता है, गुजर जाती है ज़िंदगी। औलाद है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, है फिर भी सदमे हैं, नहीं होती ठीक है ठीक है, दोनों के बगैर गुजारा हो सकता है, ईमान के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अपने आप को खुद पूछे, अगर ईमान ना होता मेरे पास, दो की जगह 10 बेटे होते, दो घरों की बजाय 10 घर मेरे होते, खुशी होती। अल्लाह ताला ईमान की नेमतें दे के बताता है कि इसके रास्ते में जब भी कोई मुश्किल आती है इंसान को, तो वमें यूमिन बिल्लाही यहदी कल्बा, जब एक इंसान हकीकत में ऐसे हजूम में गिरफ्तार होता है कि चारों तरफ से उसको लगता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अल्लाह उसको सही फैसले करने की तौफीक देता है। पीछे सूरत हदीद की आयत 22-23 में भी हम पढ़ चुके थे कि जिन हालात में इंसान को बज़ाहर मुश्किल चीज़ दिखती है उसमें बाद में खैर निकल आती है, लेकिन यहाँ बता दिया कि मुश्किलात के हजूम में जो चीज़ इंसान को जमाए रखती है ना, वो ईमान है। सख्त से सख्त हालत में भी ईमान वाले के कदम नहीं डगमगाते। जिसके दिल में ईमान नहीं होता ना, वो आफात को या तो इत्तफाकात का नतीजा समझता या दुनियावी ताकतों को इनके लाने और रोकने में मददगार समझता। कुछ ख्याली बातें सोच के जिन्नों भूतों परीतों को कहते हैं इनको खुश करो, ये मुख्तारे कुल हैं, लेकिन एक सच्चा मोमिन हर मुश्किल पे अल्लाह के आगे झुकता है। वो आस्तानों पे नहीं जाता, वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकता, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करता, बाज तो मुश्किलात में खुदकुशियां तक कर लेते हैं, लेकिन वह मैं यूमिन बिल्लाही यहदी कल्बा, जो ईमान ले आएगा अल्लाह उसके दिल को खुद ही रास्ते दिखाएगा, हक के बातिल के। कई बार उसके सामने तागूत आता है अंधेरों का शक का, लेकिन उसका दिल उसको कहता है नहीं, अक्ल करो, होश करो, यही रास्ता ठीक है। कई दफ़ा सामने दुनिया के इतने फ़ायदे रगबतें, इतने बड़े बड़े ओहदे, इतनी बड़ी बड़ी सदारतें और वजारतें आती है, लेकिन वो कहता है होश करो, ये सब मुझे मिल जाएगा अल्लाह के रास्ते में भी, एक दफ़ा जम के देखो। फिर तारीख से तारीख हालात में भी उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझता। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना कितना है यूमिन बिल्ला, तो अपने दिल को देख ले मुश्किलात में, बीमारियों में, परेशानियों में। पीछे भी इस पर बात हो चुकी है, गर्मियों में जिस्म ज़्यादा बढ़ता है, बाल ज़्यादा बढ़ते हैं, मुश्किलात में मोमिन का ईमान ज़्यादा बढ़ता है। आम हालात में तो शायद हम परख ही ना पाते कि हमारे अंदर एनर्जी कितनी है, इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि मुश्किलात को, आजमाइशों को खैर समझें। मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है, शर्त क्या है कि उससे सबक लें। मुअल्लिम बन जाती है मुसीबत हमारी अगर हम उससे सबक लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो खुशियों में भी खुश कोई नहीं रहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आजमल लिल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, अल्लाह उसके हक में जो फैसला करता है वो उसके हक में अच्छा ही होता है। खुशी मिले शुक्र करता है जन्नत, मुश्किल आई मुसीबत पड़ी सब्र किया जन्नत, دونوں کے بدلے میں جنت ہے، لیکن اللہ کو یہ خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کس درجے کا ایمان رکھتا ہے کوئی، کیونکہ وہ اللہ بکل شیءٍ علیم۔ یہاں پھر دیکھیے وہی بات آ گئی جو پیچھے بصیر اور خبیر کی صورت میں تھی، یہاں علیم کی صورت میں آ گئی۔ ایسے لگتا ہے اس صورت کو پڑھنے کے بعد تو ہم اللہ تعالیٰ سے غافل رہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ واقعی کتنا ایمان کس کے دل میں ہے، کون کس شان کا ایمان رکھتا ہے، اور اللہ اپنے علم کی بنا پر اسی قلب کو ہدایت بخشتا ہے جس میں ایمان ہو۔ دیکھیے میں نے ابھی لفظ بولا نا ایمان، تو میرے دل میں آیا لفظ مہمان۔ آپ کا ڈرائنگ روم کئی دن سے اندھیروں میں ہوتا ہے، پھر کوئی مہمان آتا ہے فوراً بلب جلاتے ہیں، پھر آپ روشنی کرتے ہیں نا وہ کہ مہمان آ گیا۔ بس یہی سمجھ لیں، کافر کے دل میں کوئی بلب جلانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایمان والا مہمان نہیں ہے۔ جو ہی مہمان یعنی ایمان دل میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ روشنیاں کر دیتا ہے، پھر لائٹ جلتی ہے۔ یہ ہے یومن باللہ یہدی قلبہ، جس درجے کا ایمان اس درجے کی شان، اتنی لائٹ۔ ایک مہمان آتا ہے ایک لائٹ جلاتے ہیں، دو آتے ہیں دو جلاتے ہیں، اور بڑا ہی من پسند مہمان آتا ہے تو خوشی میں ساری لائٹیں جلا دیتے ہیں۔ ایمان جتنا زیادہ اثر رکھتا جاتا ہے نا ہماری زندگی میں، اتنا ہمارا دل کھلتا جاتا ہے، پھر ہمیں کو بہکا نہیں سکتا، پھر باتوں میں نہیں لگا سکتا، دھوکہ نہیں دے گا، پھر باتوں میں نہیں آتے، صرف کسی کی سحر بیانی کے سحر میں کھو کر آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ آتی کہ اللہ ہماری نل حق حق ورژن اتبا واری نل باطلا باطلاً ورژن اجتنابا۔ جو بندہ بھی زندگی میں غلط فیصلے کرتا ہے نا، وہ اپنے دل کو جا کے چیک کرے، اندر ایمان ہی نہیں۔ یہاں تو استخارہ بھی مجھے سمجھ آ رہا ہے، بعض دفعہ ایک بندہ اس حالت میں نہیں ہوتا استخارہ کرے، حالات نہیں ہیں، دعا یاد نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتا، بس اللہ پہ ایمان رکھیے، پھر کہیے کہ اللہ اس کو میرے حق میں بہتر ہے تو کر دے، کیا کروں کیا نہ کروں، اس کو یہ کام دوں کہ نہ دوں، اس سے یہ لوں کہ نہ لوں، یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ سارا دن تو ہم فیصلوں کی زد میں ہوتے ہیں، اللہ یہدی قلبہ اس کے دل کو صحیح فیصلہ دیتا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت میں نے ٹی وی اسکرین سے یاد کی تھی، یعنی خود ہی یاد ہوگی، بار بار چلتی تھی کہ فلاں پا گیا وہ شخص جس کا دل حق بات کا محافظ ہو گیا، شاید اخباروں کے بھی اوپر آتی ہوگی۔ میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے اس دن اس حدیث کی سمجھ آئی، فلاں دعا کریں کہ ہمارے دل حق بات کے محافظ ہو جائے، خواہشوں کے محافظ نہ ہو۔ جب دل حق بات کا محافظ ہوتا ہے نا، تو نفع ہے کہ نقصان ہے، حق حق ہے، میں مانتی ہوں کہ نہیں مانتی، یہ حق ہے۔ جب دل حق بات کی حفاظت نہیں کرتا نا، چھوٹی سی خواہش پہ ناجائز کو جائز کر لے گا، لوگوں کے پریشر میں آ کے پریشرائز ہو جائے گا، ذرا سی مشکل میں خود کو مجبور سمجھتے ہوئے اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے واللہ بکل شیءٍ علیم۔ پہلی بات تو کیا کہ اللہ کو پتہ ہے کس کا کتنا ایمان ہے، کتنی ہدایت دینی ہے۔ ایک دوسرا بھی مطلب ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر نہیں ہے، اس نے ایمان کی دعوت دے کر اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں شدید آزمائشوں میں ڈال کر ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا ہے کس مومن پر کیا گزر رہی ہے، کون کس حالات میں کتاب کے تقاضے پورے کر رہا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، کون کتنی مشکلات میں سے گزر کے اس کام کو کرتا ہے اور کون آسانیوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تسلی رکھو، جو مصیبت اللہ کے نام پر تمہاری زندگیوں میں آتی ہے، اللہ کے علم میں ضرور ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کوئی خیر پوشیدہ ہوگی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، ان کو مشکلات میں نہیں ڈالتا۔ تم کیا کرو، واتی اللہ واتی الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ذہن میں ایک مثال آ گئی کہ اللہ مشکلات میں ڈالتا ہے، کبھی کبھی ماں خود بچے کو ساتھ لے جا کے ویکسینیشن کرواتی ہے، پھر اس کے بعد بچے کو بخار ہو جاتا ہے۔ اگر اس بچے کو زبان ہوتی یا وہ بول سکتا تو وہ کہتا میری ماں کتنی دشمن ہے، دیکھو خود اس نے مجھے سوئی لگوائی۔ لیکن بچے کو یہ نہیں پتا کہ جب بچے کو سوئی چبھتی ہے تو ماں اس کو اور سینے سے لگا لیتی ہے، کہتی اس کو میں سینے سے لگاتی ہوں، تم انجیکشن لگا دو۔ پھر وہ سوئی کا چبھنا اس بچے کے لیے خیر کا معاملہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ بتاتا ہے کہ میں تمہیں مشکلات میں تو نہیں ڈالنا چاہتا، تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے میں تو نہیں چاہتا کہ تمہیں چبھے، تمہیں تو گرم لو کا جھونکا بھی نہ چھوئے، मुझे पता है तुम्हें जो तकलीफ होती है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें करवाता हूँ ताकि तुम पक्के हो जाओ। मुश्किलात में सब्र करना सीखो, माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, हालात एक जैसे नहीं रहते। और याद रखिए, जब तक कोई कश्ती चलाने वाला खुद फुली एक्सपर्ट नहीं होगा, किसी के भरोसे पे वो कभी भी अच्छी कश्ती नहीं चला सकता। ईमान के और इस्लाम के रास्ते में अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में क्यों डालता है? ताकि आने वाले वक्त की जिम्मेदारियां समझें। तो ये मुश्किलात बंदे का इम्तिहान होती हैं। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये दो काम है जो बंदे की खुशियों को कायम रखने वाले, उसके गमों को भुलाने वाले, जो इंसान को हर हाल में सही जगह पे रखते हैं। और ये यकीन हो जाए ना कि पत्ता भी मेरे रब की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, कोई ज़र्रा तक मुझे तकलीफ़ का नहीं दे सकता अगर अल्लाह ना चाहे, इंशाल्लाह फिर खैर होती है। फ़ैन तवल्लई, तुम फिर भी नहीं मानते। इंसान है बड़ा ज़ालिम, खुद जिस बात का इकरार करता है बाद में वो खुद ही नहीं मानता। ना मानो फ़ैन नमाला रसूलिन अलबला, हमारे रसूल के ज़िम्मे तो पहुँचा देना था, उसने पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा पहुँचाया रसूल ने? अलबलागुल मुबीन, खुल्ला पहुँचाया, क्लियर पहुँचाया। ये तो नहीं किया रसूल ने कि हदीसें इतनी मुबहम कर दीं कि आम लोग समझ ही ना सकें और बाद में लोगों को उसमें से मसाइल अखज़ करके बताने पड़े। बहुत बड़ी दलील है ये इस बात की कि अल्लाह के नबी का पैगाम बिल्कुल क्लियर है। किसी से मेरी बात हुई, कहने लगी नहीं, हदीसें पढ़ के तो उलझने लगते हैं लोग, कोई कुछ होता है कोई कुछ होता है, बाद में फिर जो अकवाल की बुनियाद पर और इज्तिहादात की बुनियाद पर मसले फिक्र में बन चुके हैं वो आसान लगते हैं, फटाफट कर लें। ये इल्ज़ाम है, हमारे इल्म की कमी है, हमारा भी ज़हनी फ़क्व बुलानी, हमने तालीम तो ली ना, हमें पता कैसे चले कि अल्लाह के नबी ने क्या बताया। नहीं, अलबलाग़ुल मुबीन, क्लियर कट बता दिया नबी ने। क्या बताया? कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि अल्लाह ही पर तवक्कुल करो। ये है ईमान का फैसला, सबको पीछे डालकर अल्लाह के ऊपर ले आओ। सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं, कोई दूसरा सिरे से इख्तियार रखता नहीं कि अच्छी या बुरी तकदीर बना सके। अच्छा वक्त आ सकता है तो इसी के लाए से आता है, बुरा वक्त टल सकता है तो इसी के टलने से टलता है। जो एक अल्लाह को मानेगा उसके लिए इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं कि फल या तवक्कल, कि वह तवक्कुल करे। ऐसा शख्स ही असल में कामयाब है। इस रास्ते में जो मुश्किलात आई वही बचाएगा, तेरे रास्ते में आई तो बचा ले, तेरा काम करना चाहती हूँ करा ले, तेरा दीन मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बन गई तो बना ले, मुझे औलाद माल के फितनों से आजमाइशों से अल्लाह तू बचा ले। इसलिए फिर अब आखिर में बिल्कुल सूरत का एंड उसी सूरत की तरह जैसे पिछली सूरत थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ईमान के रास्ते की मुश्किलात आती हैं तो बाज़ दफ़ा बाहर से नहीं आती, घर से आती हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुवल लकुम, ए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारे बच्चों में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। क्या करो, मार दो गोली लेके? नहीं, तीन काम, और डिक्शनरी में शायद इससे भी ज़्यादा लफ्ज़ होते अगर किसी को माफ़ करने के दर गुज़र के तो वो भी आ जाते। है ये फितना, है ये आजमाइश, पर तुम करो क्या? फ़हज़रू हम, होशियार रहो इनसे, यानी इनकी बात मानते वक्त एक दफ़ा सोच लो कि अल्लाह की भी मान रही हूँ कि नहीं। बस ये होशियारी रहो, आंखें खोल के इनकी बातें मानो, इनकी ज़िदों पे हर बात ना मानते जाओ। और वइन ताफू, और तुम अफ़ो दरगुजर से काम लो। व तस्फ़हू, और दरगुजर करो। ताफू क्या है? अफ़। तस्फ़हू है दरगुजर। सफ़ुन कहते हैं हथेली को, सफ़ा ये जो आप पलटते हैं ना वो भी लफ्ज़ इसी से है। जाने दो, पीछे डालो, हर बात पे ना पकड़ो, यानी गई गुजरी करो, नज़र से दूर कर दो। और चौथा वतग़फ़िरू, और बख्श दो, क्योंकि फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बिला शुबा अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला है। इस आयत के दो मफहूम हैं, पीछे से मज़मून चल रहा था अल्लाह के रास्ते में आने वाली मुश्किलात, यहाँ बताया गया कि इन मुश्किलात में अक्सर लोग घर वालों से आजमाए जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि शौहर और बीवी दोनों अल्लाह के रास्ते में एक दूसरे के मुआविन हों, और इसको अपोजिट के दोनों कुफर पे हों, ये तो अक्सर होता है। या बीवी शोहर से परेशान होती है या बच्चों से। और ये आयत नाजिल हो रही थी उन हालात में जहाँ के घर घर में मर्द मुसलमान है तो बीवी कुफर पे है, बीवी मुसलमान है तो मर्द कुफर पे है। एक मर्द मुसलमान होता है और बीवी बच्चे उसको रोक लेते हैं। अल्लाह ताला ने ये और इससे अगली आयतों में ये बता दिया कि देखो कि हर एक को हालात बने हुए नहीं मिलते, कुछ को खुद बनाने पड़ते हैं। ये जुमला इसलिए बोल रही हूँ कि बास लोग कुछ मर्दों को बीवियों के साथ दीन पे तावन करते हुए, जाहिर पे क्यास करते हुए कहते हैं ले जी वो क्यों ना दीन के काम करें, उनके तो शौहर इतने मुआविन हैं, उनके शौहर तो बच्चों को भी घर में रख लेते हैं और कहते हैं जाइए आप दीन का काम कीजिए, हमें देखो हम तो छुपते छुपाते बचते बचाते आते हैं। तो याद रखिए कि कुछ लोगों को हालात बने बनाए मिलते हैं, उसके भी पीछे कोई बात होती है, ऐसा शौहर मिला क्यों, तुम्हें क्यों ना मिल गया ऐसा। अत्तय्यिबातुलित्तय्यिबीन और अलखबीसातुलिलखबीसीन एक जनरल रूल है, उसमें उस औरत की कोई पिछली ज़िंदगी की नेकियाँ होंगी कि उसको अल्लाह ने इतना अच्छा शौहर दिया, या आजमाइश होगी। करो क्या, तुम्हारे घर वाले दीन के साथ तामन नहीं करने वाले, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होती है और बीवी बच्चे उनकी मोहब्बत रास्ते का एक पत्थर बन के आ जाता है जो ईमान के तकाजों और उनके मुतालबात में तसादम शुरू करा देता है। अल्लाह ऐसे नाजुक लम्हों में अपने बंदों की रहनुमाई फरमा रहा है। करो क्या, अक्सरू हम छोड़ना थोड़ी है, एक लफ्ज़ होता है। अगर आप गौर करें ना इस जुमले को, अगर मैं उर्दू में बोलूँ ना, ए ईमान वालों तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे दुश्मन हैं, करीब ना फटकना इनके, शादी ना करना, बीवियों को तलाक दे दो, बच्चों को यतीम खानों में भेज दो और जाओ दीन के काम करने। इतना आसान था, नहीं। अल्लाह कहते पहले खुद भी तो भुगतो, फ़ख़्ज़रू हम, बस होशियार रहो, क्या मानना है क्या नहीं मानना ये देख लो, मालिक की बगावत पे उकसाएं तो ना मानो, दुनिया की ज़िंदगी में उनकी नाज़ बरदारियाँ करो, जिसमें अल्लाह नाराज़ नहीं होता उन पे तुम इनको खुश कर लो, और जिसमें अल्लाह नाराज़ होता है उसमें तुम इनको कहो कि ये तुम्हें राज़ी करें। याद रखिए घर भी एक सौदेबाजी से ही चलते हैं, कहीं आपको कैश देना पड़ता है, कहीं क्रेडिट देना पड़ता है। अच्छा अखलाक, ये जो चार लफ्ज़ है ना, फ़ख़्ज़रूहुम, हज़र से हज़र अल मौत पड़ा, ताफ़ो अफ़ो दरगुज़र, तस्फ़ो तख़फ़ीर, ये चार कह लीजिए कि क्रेडिट कार्ड्स है आपके पास। जब हम अपने घर वालों के साथ आम माहौल में इस तरह का रवैया रखते हैं कि जिसकी वजह से जब हम दीन का काम करें हमें वो इजाज़त दे दें, खुशी से जाने दें, तो वो जाने देंगे। लेकिन अगर हमारा एक वक्त उनको हम चाहते हैं दीन के लिए और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारे लाड भी देखें और हमारी डांट भी सुने और हमारे रोक में भी आए, नहीं आएंगे। या आप अल्लाह का काम करें या बाकी वक्त में घर वालों को खुश करें। कुर्बानी देनी है तो नींद की दीजिए, कुर्बानी देनी है तो टेलीफोन टॉक्स की दीजिए, दोस्तों से बेकार गप्पे हाँकने की छोड़िए, टीवी कई घंटों देखने की दीजिए। आप करके देख लें, ये चार कोने लिख लें अपने घर में, एक कोने में आपने फ़ख़्ज़रू लिखना है, दूसरे में ताफ़ू, तीसरे में तस्फ़हू, चौथे में तख़फ़ीरू, बीच में पुरसकून अंदाज से आप दीन का काम कर सकते हैं। किसी ने ज़ुबान से कहा कि इतने सख्त दांतों के बीच में कैसे रहती हो, कहने लगी नरमी की वजह से। आप ज़ुबान को हिला के देखें, आप दांतों से इधर उधर मोड़ लेते हैं, पता भी नहीं चलता। आप दुश्मनों के बीच में भी घिर चुके हो ना, जाबिरों के घर में आप जा चुके हैं, या आपके ख्याल में आपका सारा ही ससुराल जब्बारीन का, तो आप अपनी नरमी से फिर भी बच सकते हैं। हाँ, आप अपनी ज़ुबान देंगे जब दांत के नीचे, फिर तो तड़पेंगे। इन नमाम वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना है, आजमाइश का सबब है। ऐसे हालात कब थे? मक्का में कुछ लोग मुसलमान हो जाते थे, हिजरत करना चाहिए तो बीवी बच्चे रास्ते में आ गए, नहीं 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 हम तो आपको नहीं जाने देंगे, मुमकिन ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा चलो नहीं तो फिर हम नहीं जाते। और ये वो दौर था कि जब हिजरत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज था, अल्लाह ने ऐसी औलाद और ऐसी बीवियों को दुश्मन करार दिया और अब फितना करार दिया कि ऐसी चीज़ों पे मत आइए। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। एक रिवायत में आता है कि ये आयत औफ बिन मालिक के बारे में नाजिल हुई, ये मदीना में मौजूद थे। जब किसी गजबे या जिहाद का मौका आता तो जिहाद के लिए जाने का इरादा करते थे, मगर इनके बीवी बच्चे फरियाद करने लगते कि हमें किस पर छोड़कर जाते हो, ये उनकी फरियाद से मुतासिर होकर रुक जाते। तो एक पता चली जिहाद की बात और दूसरी रिवायत पता चली कि जिसमें हिजरत से रोका तो कहा ऐसी औलादे और ऐसे शौहर और ऐसी बीवियां जो तुम्हें अल्लाह के दीन के तकाजों से रोके, नमाजें छुड़वा के तुम्हें शॉपिंग पे ले जाएं, नमाजें छुड़वा के तुम्हें वो पार्लर्स में ले जाएं, जो तुम्हें कहें कि हमारी नाजबरदारियां करते रहो और इनको छोड़ दो, तो वो समझ लो फिर फितना है। और वो शौहर भी इसके बरक्स बीवियों के, जो शौहर बीवियों को दीन से रोकें, नमाज से रोकें, अल्लाह से रोकें, क्या और हमारी बातें मानते रहो, तो बैठो हमारे साथ गिबतें करते हैं ख़ानदान वालों की और बातें करो, तो यहाँ के फिर ऐसे मामले में तुम कैसे डील करो। मैं सोचती हूँ कि इससे खूबसूरत तरीके से कोई भी इंसान को दीन का काम करने के लिए घर वालों के साथ कैसे ताल्लुकात रखें नहीं सिखा सकता, जैसे सिर्फ इस एक आयत में और उसके अगली आयत में सिखा दिया गया। होशियार रहो, इनकी दुनिया बनाने के लिए अपनी आकबत बर्बाद ना कर लो, इनकी मोहब्बत को कभी अपने दिल में इस हद तक ना बढ़ने दो कि वो अल्लाह और रसूल के साथ तुम्हारे ताल्लुक और इस्लाम के साथ तुम्हारी वफादारियों में हायल हो जाएं। इन पर कभी इतना एतमाद ना करो कि तुम्हारी बेख्तियाती से मुसलमानों की जमात के राज इनको मालूम हो जाए कि वह दुश्मनों तक पहुँचे। नबी सल्लम ने फरमाया कि यू ताबी रजुलिन यौमल क़ियामा, एक शख्स क़्यामत के रोज़ लाया जाएगा, फ़युक़ालू अकल एयालहू हसनाती ही, कहा जाएगा इसके बाल बच्चे इसकी सारी नेकियां खा गए। वइन ताफू वतस्फहू वतग़फिरू, अफ़ो दरगुजर से काम लो, अल्लाह माफ़ करने लगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी दुश्मनी से तुम्हें सिर्फ इसलिए आगाह किया कि तुम इनसे होशियार रहो, अपने दीन को इनसे बचाने की फिक्र करो। ये नहीं मतलब कि बीवी बच्चों को मारने पीटने लगो, सख्ती करो, ताल्लुकात में ऐसी बदमजगी पैदा कर लो कि इनकी और तुम्हारी घरेलू ज़िंदगी अजाब बन जाए और या तुम पढ़ते रहो या लड़ते रहो। ये ना करो, ये बहुत गलत चीज़ होती है, इससे बीवी बच्चों की और शौहर की इस्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इस्लाम के खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा होंगी, चार छः लोग तुम्हारी बात जानने वाले आते आते इस्लाम से रुक जाएंगे कि देखो इस्लाम की वजह से ये घर जहन्नुम बन गया था, हम नहीं चाहते, क्योंकि इंसान को घर बड़ा प्यारा होता है और इंसान की ज़रूरत है, और सच्ची बात है कि घर के सुकून के बगैर आप दीन का काम कर भी नहीं सकते। अकेली माँ जब होती है उसको पता लग जाता है कि फिर और मसले शुरू हो जाते हैं कि मैंने क्या करना था, लो मैं तो जॉब पे हूँ, और होता क्या कि इंसान फिर बदमिजाज होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। हम जब बहुत थक जाते हैं ना, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे भी नहीं माँ को अच्छे लगते। हम दीन के भी काम से चिढ़ जाते हैं जब हम थक जाते हैं। यहाँ याद रखिए कि युकम उस वक्त आ रहा था कि लोग अभी नए नए मुसलमान हुए थे, जो ही इस्लाम कबूल करते प्रेशर। आज भी वही दौर है, एक इस्लाम उस दौर में आ रहा था, एक आज इस 19th century से वापस आ रहा है। हर घर में शौरी इस्लाम शुरू हो रहा है, कहीं वालदैन काफिर वो दबाव डालते हैं दीन से फिरो दीन से फिरो, कहीं बीवी बच्चे कहीं कुछ। सूरह अनकबूत के आयत 8 में हमने पढ़ लिया था बहुत डिटेल से कि कैसे ऐसे वक्तों में उनसे मामला किया जाए, तो कहा कि नरमी रखो, अच्छे तरीके से बात करो। तबरानी की एक रिवायत है, आपने फरमाया तेरा असल दुश्मन वो नहीं जिसे अगर तू कत्ल कर दे तो तेरे लिए कामयाबी है। ऐसी है ना, सोचते हैं हम ये कि दुश्मन को कत्ल किया और वो तुझे कत्ल कर दे तो तेरे लिए जन्नत है, बल्कि तेरा असल दुश्मन हो सकता है कि तेरा अपना वो बच्चा हो जो तेरी ही सुल्फ से पैदा हुआ, फिर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा वो माल है जिसका तू मालिक है। ये तो पुरानी की रिवायत है। हाथ कांपते हैं ना, हम खुश होते हैं बच्चों पे, अल्लाह करे बच्चे भी हों खुशियों वाले हों, हम माल मिलने पे खुशियाँ मनाते हैं, ये माल कहीं ऐसा हो कि आग में ले जाए। सूरत अनफाल में भी हमने पढ़ा था कि देखो इनकी मोहब्बत को अगर अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब करोगे तो अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, पूरी लिस्ट दी थी अल्लाह ताला ने वहाँ मोहब्बतों की। अब ये बात सुन के तो खून कहते ना खुश्क होता है, हाथ ठंडे होने लगते हैं। अल्लाह एक बच्चे को देखें दूसरे को, एक बिगड़ा एक ठीक, एक के तकाजे दूसरे, शोहर एक वक्त में खुश दूसरे में नाराज, करूं क्या, दीन चलाऊं के घर चलाऊं, तो काफत तक अल्लाह मस्तता, बस डरते रहो अल्लाह से जितनी तुम्हारी इस्तात है। कैसा प्यार है रब को बंदे से, जो कर सकते हो बेहतर तौर पे कर लो। फत्तकुल्लाह मस्तता, वस्माऊ और गौर से सुनो, ऐसे लगता है कि कान खोल कर सुनो, क्या अल्लाह का फरमान सुनो, सुनना ना छोड़ो, सुनना छोड़ोगे तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि डील कैसे करना है इनसे। फहजरू ताफू तस्फहू व तगफिरू का सबक सुनोगे ही नहीं तो बच्चों से डील करना कैसे आएगा, बीवियों शौहरों से मामला करना कैसे आएगा। तो नंबर वन सुनते रहो, फिर व अतीऊ और मानते भी रहो, इताअत करते रहो। ये ना कि चलो सिर्फ 20 दफ़ा सुनने वाला कुरान पढ़ लेते हैं फिर अगले साल मानने वाला कुरान पढ़ेंगे। अच्छा, मानने के रास्ते में तो बहुत मुश्किल आता है, झगड़े लड़ाई, तो कहा वानफे को सदके दिया करो, खर्च करो, अल्लाह को राज़ी करो कि इनके दिल तुम्हारे लिए नरम करे। खैर अल्ली अनफुसिकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। कितना प्यारा रब्त है इन आयात में। जब घर वालों की तरफ से कोई मुखालफत हो सदका करें, चाहे आराम का सदका करें, चाहे वक्त का सदका करें, जान का करें कि माल का करें। वमई यू कशुख नफसी ही फ़ुलाए कहमुल मुफलिहून, और जिन्हें बचा लिया गया उनके नफ्स के बुखल से तो यही लोग हैं फलाह पाने वाले। फिर वही बात आ गई, हर सूरत के आखिर में बीवी बच्चे घर और शुख कंजूसी निकाल दो। माल को अच्छा रखो, इनको अच्छा रखो, अच्छा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे औलाद के बारे में फरमाया, ये मब खलतुम मज बनतुन, यानी बुखल और जुबन के असबाब पैदा करने वाली चीज़ें औलाद। सच है कि नहीं? औलाद होती है बंदा बखील हो जाता है, हाँ इनके मुस्तकबिल काम आएगा, देता हुआ हाथ रुक जाता, नहीं बच्चियों की शादी है, अभी अपना ये करना है वो करना है। इसी तरह बाद सलफ सालहीन कहा करते थे, अल एयालु सुसुतात, एयाल यानी घर वाले इंसान की नेकियों के लिए घुन है, जैसे घुन गल्ले को खा जाता है तो ये लोग नेकियां खा जाते हैं। जो कर सकते हो वो कर लो, बस देखो दिल अपना ही तो बखील नहीं था। इन तुक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़े हसन दोगे, युदाइफु लकुम, वो इसे कई गुना ज़्यादा कर देगा तुम्हारे लिए। फिक्र ना करो, कहीं नहीं जाएगा, कई गुना आएगा। दुनिया वाले कई गुना कर दें तो वो सूद है, अल्लाह कई गुना कर देगा तो वो उसका इनाम है। वह यग़फिर लकुम, और तुम्हें मुआफ़ कर देगा तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के गुना और नेकी के कामों में कमियाँ बेशियाँ, अल्लाह मुआफ़ कर देगा। क्योंकि वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और हिल्म वाला। शकूर क्या है? बंदा थोड़ा सा काम करे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह बेहिसाब अजर देता है। और हलीम कितना है? कि बंदे के बड़े बड़े गुनाहों पे पकड़ता नहीं, उसको छोड़ देता है। आलिमुल गैबी व शहादतिल अजीज़ुल हकीम, हर नेहा और एयां का जानने वाला, सब पर गालिब बड़ा दाना है। आगाज़ भी अल्लाह की सिफात से, सब्बहलिल्लाह के आगे, और आखिर देख लीजिए अल्लाह अश्शकूर हलीम आलिमुल गैब व शहादा अल अज़ीज़ और अल हकीम। आखिरी 7 लफ्ज़ अल्लाह की सिफात के हैं सूरत के एंड पे। जब तक अल्लाह की बड़ाई समझ नहीं आती, ना माल लगता है, ना वक्त लगता है, ना कुर्बानियाँ होती हैं, ना घर के माहौल थोड़े से मुतासिर करके बंदा अल्लाह के रास्ते में लगता है। अल्लाह ने तरीका बता दिया, वो हम ना सही कर पाए, ये हमारी कमी है। कभी घर नहीं टूटते दीन की वजह से, टूटना होता तो अल्लाह के नबी का घर टूट जाते, जितने वो मसरूफ़ थे उतना तो कोई नहीं था। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे घर वालों को हमारे दीन के मुआविनीन बना दे, और हमें समझ दे, अक्ल दे, फहम दे कि कैसे किसके साथ चलना है। अल्लाह बड़ा कदरदान है। हिकमतें मांगिए, अपने घर वालों को साथ लेकर चलने के तरीके सोचिए। लेकिन आप देखिए, क्या आपको इन सारी आयतों में कहीं एक ये पैगाम मिला कि दीन छोड़ दो? बस माओ की जगह लिखा था वला तस्माओ, मत सुना करो, छोड़ दो, बहुत हो गए 28 बारे, ख़त्म करो ना, आप लड़ाई का सिलसिला ठंडा करो। चलो वला आती हो, बस मुसलमान हो गए हो, क्या करना है अतात करके, मुझे भी पता है तुम्हारा घर टूट रहा है। वन फेकू, नहीं नहीं छोड़ो, खर्च नहीं, इन्हीं पे खर्च करो, इन्हीं के लाड देखते रहो, इन्हीं के मुस्तकबिल बनाते रहो। नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल नहीं। ऐसे लगता है कुरान का स्टाइल क्या है कि इंजेक्शन भी लगाता है और ऊपर फाहे भी रखता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इसका सही हक अदा कर सकें, और अल्लाह भी हमारे टूटे फूटे पे राज़ी होके कबूल कर ले। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।